श्लोक नंबर 5। सदा अपने को राजा समझते हो, किसका राजा? कर्मेंद्र स्वयं का राजा, और किसका राजा? मन का राजा, मन बुद्धि संस्कार का राजा, सूक्ष्म कर्मेंद्रियों का राजा, और किसका राजा? सदा अपने को राजा समझते हुए, मन का राजा, बुद्धि का राजा, कर्मेंद्रियों का राजा, और सर्वशक्तियों का राजा, और सर्वगुणों का राजा,
और
पांच तत्वों का राजा, प्रकृति का राजा, प्रकृति जीत जितेंद्रिय, सेल्फ पर राज्य है, अर्थात स्वराज्य अधिकारी हो, और दूसरा कौन सा राजा हो? भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी, परमधाम में ब्रह्मांड का राजा, मालिक, बादशाह, और अभी अभी कौन से बादशाह?
बेफिक्र
बादशाह, और कौन से बादशाह? बेगमपुर के बादशाह। तो सदा अपने को राजा समझते हो, राजा सेल्फ पर राज्य है, अर्थात स्वराज्य अधिकारी हो, और दूसरे कौन से राजा हो? बेफिक्र बादशाह। बेफिक्र बादशाह इस समय बनते हो, क्योंकि सतयुग में फिक्र व बेफिक्र का ज्ञान ही नहीं, कल क्या थे और आज क्या बन गए। बेफिक्र बादशाह बन गए ना, बेफिक्र बनने से भंडारे भरपूर हो गए। ब्राह्मण जीवन अर्थात बेफिक्र बादशाह, स्वराज्य मिला, सब कुछ मिला। स्वराज्य मिला है, कभी कोई कर्मेंद्रिया तो धोखा नहीं देती, कभी कभी थोड़ा खेल करती है, तो कंट्रोलिंग पावर व रूलिंग पावर कम है। तो सदैव चलते फिरते यह स्मृति रहेगी, सदा रहेगी, कौन सी? मैं स्वराज्य अधिकारी बेफिक्र बादशाह हूं। बाप आया ही है आप सबके
सेवा में,
नहीं स्वराज्य बेफिक्र बादशाह के लिए, क्या फिक्र लेने के लिए, आप सबके फिक्र लेने के लिए। तो फिक्र दे दिया ना, तो मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, मैं बेफिक्र बादशाह हूँ, मैं बेगमपुर का बादशाह हूँ, ये सब हमारे समान है। तो बाप किस लिए आया है? सबके फिक्र लेने के लिए। तो फिक्र दे दिया है ना, थोड़ा छिपा के तो नहीं रखा है, पॉकेट चेक करके देखो। बाबा कह रहे अपनी अपनी पॉकेट चेक करके देखो, कौन सी पॉकेट? बुद्धि रूपी, मन रूपी पॉकेट, दोनों ही देखो। मन के किसी कोने में भी फिक्र ना हो। जब है ही बाप के बच्चे, तो बच्चे बेफिक्र होते हैं, क्योंकि बाप दाता है, तो दाता के बच्चों को क्या फिक्र है? तो बाप हमें बेफिक्र बनाने आए, बेगमपुर का बादशाह बनाने आया है। कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं, कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं, कोई बोझ नहीं, कोई भार नहीं, मुक्त करने आए हैं। तो बाप आया ही है आप सबके फिक्र लेने के लिए। तो फिक्र को दे दिया ना, थोड़ा छिपा के तो नहीं रखा है, पॉकेट चेक करके देखो, मन का पॉकेट और बुद्धि का पॉकेट, कहीं पर भी कोई फिक्र ना हो। कैसे बनेंगे बेफिक्र? और एक तो फिक्र बाबा को दे देंगे, और क्या करेंगे?
फिक्र हो ऐसे काम,
ऐसे काम ही नहीं करेंगे कि जिसमें फिक्र हो, जिसमें चिंता हो। हाँ, मेरा मेरा जो है उसको तेरा में परिवर्तन, मैं को समान में परिवर्तन कर देना, और मेरे को तेरे में परिवर्तन करना, ये दो छोटे काम करने हैं बस। ये कर दिया तो कोई फिक्र नहीं होगी, और फिक्र से मुक्त कैसे होंगे, चिंता से मुक्त। चिंता करने वाला बैठा है ना, वो बैठा है चिंता करने के लिए, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। उसने कहा है सारे विश्व की मैं फिक्र करता हूं, सारे विश्व की आत्माओं का बोझ मैं लेता हूं, तो तुम टोकरी और बोझ क्यों उठाते हो? मुरली चली थी ना एक, गठरी, टोकरी नहीं गठरी, गठरी क्यों उठाते हो? और क्या करेंगे? बेफिक्र बनने के लिए, चिंता से मुक्त होने के लिए, तनाव से मुक्त होने के लिए, डबल लाइट स्वरूप में रहेंगे इसमें, और ट्रस्टी बनकर काम करेंगे सब कुछ, और ड्रामा में निश्चय अगर रहा तो फिक्र नहीं होगी। ड्रामा फिक्स्ड है, ड्रामा में जो कुछ हो रहा है सत्य है, ड्रामा एक्यूरेट है, यहाँ किसी की कोई गलती नहीं, सभी संपूर्ण निर्दोष है। इस निश्चय से साक्षी भाव को धारण करना बीच बीच में, और
अकाल तख्त,
अकाल तख्त पर जो विराजमान है, स्थित है,
एक
रस स्थिति में है, और तीन बिंदी कहा था ना कल, जो अब तक हुआ उसको फुल स्टॉप, पूर्ण विराम,
अकाल तख्त पर, दिल तक,
जो अकाल तख्त पर है वो ऑटोमेटिक उधर ट्रांसफर हो जाते हैं, दिल तख्त पर इधर बैठो तो उधर,
तो फिर डबल लाइट,
तो फिर डबल लाइट, और
परंपरावन
श्रीमत, जो श्रीमत पर एक्यूरेट चल रहे हैं उनको फिक्र नहीं हो सकती। सबसे पहली श्रीमत कौन सी है? सबसे पहली श्रीमत पवित्र बनने की श्रीमत है सबसे पहली, और बाबा ने इस श्रीमत के लिए कल की मुरली में एक सबसे पावरफुल महावाक्य का उच्चारण किया है जो आज तक मैंने कभी सुना नहीं। क्या कहा? गृहस्थ व्यवहार में रहते फॉर माय सेक, क्या कहा? गृहस्थ व्यवहार में रहते फॉर माय सेक पवित्र बनो, केवल मेरी खातिर, केवल मेरे लिए, भूल जाओ मैंने क्या सुनाया है, भूल जाओ सृष्टि चक्र में क्या मैंने बताया तुमको ज्ञान, केवल मेरी खातिर, केवल मैं कह रहा हूं, बिकॉज आई एम टेलिंग, बस बाकी सब भूल जाओ,
यही भीख मांगते
बाप बच्चों से भीख मांगते हैं, एकदम डेस्परेट कंडीशन है लास्ट की, गृहस्थ व्यवहार में रहते फॉर माय सेक, मेरी खातिर, मेरे लिए, बस मैं कह रहा हूं इसके लिए, अभी भूलो सब कुछ, मेरे लिए इतना तो करो। बाप बच्चों से,
बूढ़े बाप की लाज रखो,
बूढ़े बाप की लाज, उसकी दाढ़ी की लाज रखो, उससे क्या होता है क्या नहीं होता है वो छोड़ो, केवल मैं कह रहा हूं बस इसके लिए पवित्र बनो। कितना सुंदर महावाक्य है, फॉर माय सेक, और फिक्र से मुक्त कैसे होंगे? फकूर, नशे में रहने से, सुमान में रहने से, रूहानी नशे में, नारायणी नशे में, ईश्वरीय नशे में, मौलाई मस्ती में रहने से, इलाही मस्ती में रहने से बेफिक्र रहेंगे। निमित्त भाव, ट्रस्टी भाव, ये सब अगर है तो बाबा कहते हैं कभी भी कोई कर्मेंद्रिय धोखा न दे। तो शक्तिशाली राजा कौन? जो अपनी प्रजा पर राज्य करे। कमजोर राजा कौन? प्रजा जिस पर राज्य करे, जो कि प्रजा के अधीन है, जो प्रजा को अधीन नहीं रख सकता। बार बार प्रजा में विद्रोह होता है, रिवॉल्ट, प्रजा में विप्लव होता है बार बार, प्रजा राजा के विरोध में विप्लव ये करती है, विद्रोह करती है, बगावत करती है, तो उसको शक्तिशाली राजा कहेंगे? जितने शक्तिशाली राजा हुए हैं अगर उनका इतिहास देखा जाए तो उनके शासन में कभी किसी ने विद्रोह नहीं किया, अगर हुआ भी होगा तो वो तुरंत खत्म हो गया। और जो कमजोर राजा थे बार बार उनके शासन में विद्रोह हुआ, तो विद्रोह अर्थात रिवॉल्ट, बगावत। तो हमारी जो कर्मेंद्रिय है वो हमारे प्रजा है, तो प्रजा हमारे अधीन हो,
उसको भरपूर रखना, संतुष्ट रखना।
संतुष्ट रखेंगे तो कभी नहीं, अगर उनको
जैसे
दुखी करो
को संतुष्ट रखते,
अगर उनको दुखी करके रखो तो वो बार बार विद्रोह करे,
भरपूर करना उनको वर्षा के बाबा से।
कर्मेंद्रियों को बाबा ने कहा शीतल कर दो, शांत और शीतल। कुछ दिन पहले मुरली चली ना, तुम्हारी कर्मेंद्रिया योग से क्या कर दो, शांत और ठर। योगी के लिए कहा है बाबा ने। तो कोई भी कर्मेंद्रिया तो धोखा नहीं देती है, सारी कर्मेंद्रिया हमारे वश में हो। आंख वो ना देखे जो हम नहीं चाहते, कान वो ना सुने जो कि श्रीमद के विरुद्ध में, हम वो ना बोले जो कि श्रीमद के विरुद्ध। तो सारी ही कर्मेंद्रिया हमारे अधीन हो, वश में हो, मर्यादा अनुसार चले सारी कर्मेंद्रिया। मन कहीं ना भटके, बस एक बाप में स्थिर हो जाए। अभी आगे। अच्छा, यह कौन सी भाषा वाले है? बाबा पूछ रहे। किसी ने कहा स्पेनिश पोर्तुगीज, तो बाबा कह रहे देखो साइंस के साधन आपके काम में तो आ रहे हैं ना। कितना सुंदर महावाक्य, ड्रामा अनुसार साइंस वालों को भी टच तब हुआ जब बाप को आवश्यकता है। संसार में जो भी इन्वेंशन बन रही है उनका मुख्य तुम्हारे लिए, तुमको जरूरत है तो उधर उन वैज्ञानिकों को टच होता है। साधन यूज करना अलग चीज है। कल की मुरली में भी था ना, टेप रिकॉर्डर के बारे, सबके पास होगा तो आ गया ना, कब बैठा था तब बोला था बाबा ने, इस टेप सबके पास होगा तो आ गया। ये भी उनको ही टच हुआ, तब तो नहीं था ये, पर टच हुआ और आ गया। पर उससे भी अधिक शक्तिशाली हमारे पास साधन है। कौन से? परसों का वरदान, वो विज्ञान की शक्ति से रेगिस्तान पर भी हरियाली ला सकते हैं, वो पहाड़ी पर फूल खिला सकते हैं। तो तुम शक्तिशाली आत्माओं के विशेष शक्तिशाली संकल्प द्वारा भी तुम नामिद्वार को उम्मीदवार बना सकते हो। और कल क्या कहा था वरदान में, किसी भी आत्मा का संबंध बाप से जुड़ा सकते हो और उस आत्मा को माला माल बना सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास सत्ता कौन सी है,
अल्माइटी अथॉरिटी,
माया जीत और प्रकृति जीत, ये सत्ता तुमको प्राप्त है। जैसे उस सकामी राजाओं के पास दान पुण्य की सत्ता प्राप्त है, वो किसी को कुछ भी बना सकते हैं, वैसे तुम्हारे पास भी माया जीत और प्रकृति जीत की सत्ता प्राप्त है। इसके लिए तुम महादानी हो, वरदानी हो। तो किसी भी आत्मा का संबंध तुम केवल संकल्प मात्र से, किसी भी आत्मा का संकल्प संबंध बाप से जोड़ सकते हो और उसे माला माल बना सकते हो। साधन यूज करना अलग चीज है और साधनों के वश हो जाना अलग चीज है। तो आप साधनों को यूज करते हो या साधनों के वश हो जाते हो? यूज करना परंतु उसके अधीन नहीं, उसके वश नहीं। कभी कोई साधन अपनी तरफ खींचता तो नहीं है? साधनों के आधार पर हमारी साधना ना हो, हमारी जो साधना है वो निराधार हो। साधन आज है कल नहीं रहेंगे। बाबा ने कहा है अप्राप्ति में भी प्राप्ति का अनुभव हो, ये हमारी साधना है। आज सब कुछ है, कल कुछ भी नहीं रहेगा, उसके बाद में भी हमारी साधना वैसी ही हो। किसी ने कहा था ना जगदीश भाई को ही ठंड बहुत है, तपस्या कैसे करे, हीटर चाहिए, तो बोले खुद ही हीटर बन जाओ, हीटर योग। ज्वाला स्वरूप योग, खुद ही हीटर बन जाओ ताकि उसमें से फिर दूसरों को भी लगे, वहां आने के बाद आप जाओ गर्मी लग रही है, ऐसा योग हो। तो मास्टर क्रिएटर होकर के क्रिएशन से लाभ भले लो, अगर वशीभूत हो गए तो क्या हो जाएगा? साधनों के अगर अधीन हो गए हम तो क्या होगा?
साधना
कमजोर हो जाएगी, कमजोर होते होते खत्म भी हो जाएगी, और क्या हो जाएगा? अगर वशीभूत हो गए, साधनों के वशीभूत हो गए, साधनों के अधीन हो गए, साधनों पर संपूर्ण अवलंबित, वो है वो नहीं है तो हम साधना ही नहीं कर सकते। ऐसा अगर हो गया तो और क्या क्या होगा? सब कुछ चला जाएगा। और
क्या क्या जाएगा,
वो ही तो पूछ रहे क्या क्या जाएगा।
बाप से डिप्रेशन हो जाएंगे,
उदास हो जाएंगे पहले तो कि वो चाहिए। हाँ हमारे हॉस्पिटल में है ना, गाड़ी अगर निकल गई तो फिर छोड़ो आज मधुबन यही हो कर लेते। गाड़ी गाड़ी पर आधार है, गाड़ी गई तो छोड़ो आज ही तक देखते हैं। और ट्रांसपोर्ट ये भी एक साधन है, ट्रांसपोर्ट के ऊपर अधीनता, वो है तो बहुत अच्छा है, उसका यूज करो, पर होगा कल नहीं रहेगी, पैदल ही निकलना पड़ेगा। उस दिन कहा ना बाबा ने, तुम अमृत वेला पैदल ही जाओ, कोई जानवर तुम कोई कुछ छीनेगा नहीं तुमसे, 10 माइल 20 5 माइल कितना भी दूर हो अगर बाप की याद में जाओगे तो थकोगे नहीं। बाप इतना दूर से आते हैं तुमसे मिलने, तो तुम नहीं आ सकते। किसकी पाठशाला है, कल की मुरली में था ना वाक्य, ये पाठशाला किसकी है जिस जहां तुम बैठे हो, कौन तुमको पढ़ा रहा है? तो अगर वशीभूत हो गए तो क्या हो जाएगा, साधनों के वशीभूत हो गए तो साधना खत्म हो जाएगी, साधना कमजोर हो जाएगी, उदासी सी छा जाएगी और खाली खाली लगेगी, खालीपन आ जाएगा। और जहां पर खाली है, विज्ञान का नियम है कि कोई भी जगह खाली है, खाली रह नहीं सकती, तुरंत ऑक्यूपाइड हो जाती। और भूत प्रेत और जो इस तरह के जो भूत पिशाच रहते कहां है, खंडरों में रहते, जो खाली स्थान है, एकांत वाले स्थान है ना, वहां पर इनका निवास होता है। जो भीड़ भड़ाके में थोड़ी रहते हैं, ये कहाँ रहते हैं, खंडरों में, गांव के बाहर।
खाली दिमाग से
हाँ, तो खाली जो चीज है, तो अगर मन खाली है तो वहां पर भी भूत प्रवेश करेंगे। पर व्यर्थ संकल्प ही भूत है,
यहाँ भी बैठ सकते
जगह। संकल्प के आधार से बता सकते हैं, संकल्प व्यर्थ संकल्प आने लगेंगे। जो व्यक्ति खाली बैठा है उसको कुछ और ही और करने की इच्छा होती रहती है। साइंस
के हिसाब से,
साइंस के हिसाब से
खाली मन हम तो समझते हैं।
साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के पास साइंस तो उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहता है, पर जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान के सिद्धांत ही है ये कि जहां पर भी खाली रहेगा मन, कभी भी खाली नहीं बैठता है, वो कुछ ना कुछ करने की चेष्टा करता ही है। अगर उसको कुछ श्रेष्ठ ना दिया जाए तो वो नीचे की तरफ जाता है, उसको ऊर्ध्वगामी बनाना है, नहीं तो अधोगामी उसकी प्रवृत्ति है। श्रेष्ठ देना है
तो शरीर है,
हाँ शरीर किसी के भी अधीन नहीं होना। बाबा ने कहा अगर वशीभूत हो गए तो दुख देंगे, साधन साधनों के अगर हम वशीभूत हो गए तो साधन किसी न किसी रीति से दुख देंगे। साधना करनी है, सारे साधनों को यूज करना है, उपयोग करना है, परंतु हमारी साधना का आधार वो ना हो। ऐसा नहीं कि अगर अलार्म ने हमको नहीं जगाया तो हम नहीं जगे। कितने साल के तपस्वी है हम, कितने साल की योगी है हम, और अभी तक अगर हमारा आधार घड़ी है कि उसमें अगर वो नहीं बजा और हम नहीं उठ रहे, हमारी साधना हमारी नींद भी इतनी सहज हो कि बराबर समय पर हमको जागा जाए, जाग जाए, ये है साधना के। क्योंकि आज वो है कल नहीं रहेगी, तो अच्छा वो है पर उसने अगर धोखा दिया तो गए हमारा अमृत वेला, तो अमृत पान करने का समय है। और वो उसके ऊपर अगर हम डिपेंडेंट रहे, जैसे वो बताते हैं ना, एक भाई था रोज 3 बजे का अलार्म लगा के रखा है, जैसे ही बजता था उसको बंद कर देता था, जैसे ही बजता था बंद कर देता था, वापस सो जाता, जो नींद खुलती थी फिर डायरेक्ट 5 और 5:30 बजे। तो उसने क्या किया, एक दिन जो बाजू का जो खटिया थी उसके नीचे रख दिया उसको, ताकि वो उठे फिर नीचे घुसे और उसको बंद करे, तो ये जो प्रोसेस है इसमें उसको जागृत हो जाए। तो दूसरे दिन बजा, फिर उठा, फिर घुसा नीचे, बंद किया और वही सो गया। तो सोने का संस्कार तो इतना शक्तिशाली है कि साधन
पानी के अंदर,
पानी के अंदर वाटर प्रूफ घड़ी लानी पड़ेगी। तो हमारी जो साधना है सीधा अमृत वेले से अगर जो चालू होती है, सबसे पहले घड़ी के अधीन ना हो, ट्रांसपोर्ट के अधीन ना हो, ट्रैफिक कंट्रोल के अधीन ना हो। ट्रैफिक कंट्रोल बज रहा है तो हम योग कर रहे हैं, अपना ट्रैफिक कंट्रोल स्वयं सेट करो। कोई भी साधन, बाबा ने कहा है अगर वशीभूत हो गए तो दुखी हो जाएंगे। भोजन, अच्छा भोजन चाहिए तो अच्छा योग, योग भट्टी जब भी होती है कहीं पर तो उसके बाद भोजन रखा जाता है, ब्रह्मा भोजन खुश करने के लिए, पर वो है या नहीं है, कैसा भी भोजन हो वो ब्रह्मा भोजन ही है, उसके भी अधीन हम ना हो। और मोबाइल तो सबसे बड़ा साधन है।
एक मुरली में बाबा बोल रहे थे चित्र पर भी आधार नहीं,
कोई भी कुछ भी हो फिर उसके हिसाब से। बाबा ने तो यहाँ तक कहा ये जो ट्रांसलेट है, आज ट्रांसलेट है कल नहीं होगी, तो विनाश के क्रम में तो आप कहोगे मुझे तो एक ट्रांसलेट चाहिए जिसमें ब्रह्मा हो और फिर मैं उसमें ध्यान केंद्रित करूं तब मेरा योग लगता है, उसके सिवे मुझे आदत नहीं है। लाइट गई तो योग खत्म। तो लाइट के आधार पर करंट के हमारा योग ऐसा हो कि लाइट करंट ये सब कुछ नहीं हो। हम यहां हैं मधुबन में है तो योग बहुत अच्छा है, मधुबन के बाहर जाते ही खलास, जैसे यहां से लौकिक घर गया कोई तो खत्म ऐसे हो जाता है। तो स्थान के आधार पर भी हमारा योग, हम जहां हैं वहां हमारा योग हो। चित्र के लिए तो बाबा ने कहा है कभी बिंदी को सामने रखकर बाप की बाप को याद किया जाता है क्या, साकार महावाक्य है। तो वो जो चित्र ट्रांसलाइट, अच्छा गीत, सॉफ्ट म्यूजिक, वो सॉफ्ट म्यूजिक बजना चाहिए, अगर नहीं बजा तो कहां है, अभी तक क्यों नहीं आया, अभी बैठे हैं पर ध्यान सारा उधर है, वो आया क्यों नहीं, क्या हुआ, क्यों नहीं बजा अभी तक, गीत लेट क्यों बज रहा है, अच्छा गीत बजा उसके बाद तुरंत गीत क्यों बज रहा है दूसरा। कभी कभी बजता है ना, एक गीत बजा उसके बाद तुरंत दूसरा। तो संगीत गीत कुछ नहीं था, हम जहां हम खड़े वहां योग, ना तो संगीत ना तो सॉफ्ट म्यूजिक ना तो गीत ना कविता है कुछ नहीं, ना तो बैठने का स्थान, कुर्सी नहीं मिली नीचे बैठना पड़ा है तो योग खत्म, वही स्थान चाहिए, सोफा चाहिए, सोफा नहीं मिला तो योग खत्म।
ये है ना,
हाँ वो ये है पर वो नहीं रहा और ये रहा तो
बाबा के बच्चे बिगड़े हैं
लाड़ प्यार से, कुछ ना हो तो भी
चादर या
चाहे बैठने का स्थान, चाहे सोने नीचे बैठने का स्थान, कुछ भी ना, कुर्सी ना हो सोफा ना हो तो भी हमारा योग शक्तिशाली हो, लाइट हो या ना हो, कम लाइट हो डिम लाइट हो तो हमारा योग शक्तिशाली हो। किसी भी जितने आधार हमने ले रखे हैं योग के लिए वो कुछ भी ना हो। दूसरा ये तो स्थूल हो, ये तो स्थूल हो गया, सूक्ष्म भी कभी बहुत व्यस्त है तो हम कारण देते हैं ना कि बहुत बिजी थे, संडे की मुरली कल की मुरली में कहा कितना भी व्यस्त हो परंतु बीच में कहो स्टॉप तो स्टॉप हो जाना चाहिए, इतना हमारी ऐसी साधना हो, वो भी किसी भी साधन पर आधार नहीं। और भी कोई साधन है ब्राह्मणों के, बहुत है वैसे तो, और कौन से साधन है, ट्रांसपोर्ट में बहुत सारे आ जाएंगे सारे, और दृष्टि, यहाँ कोई योग कराने वाला सामने बैठना चाहिए, निष्ठा पे बैठा हो, और
साहित्य
अच्छी बात है वैसे तो, हाँ ठंडी गर्मी तीन मौसम है माउंट में, वो तीनों के में बारिश हो रही है, छाता छाता नहीं, छाता तो चाहिए पर छत्र तो हमेशा है, छाता अगर नहीं है तो बाबा कहते हैं हाँ बीमार हो
मन शरीर का
बीमार हो या फिर हमारे घर में कोई बीमार हो
दोनों संग, उस पे कौन सा साधन, साधन तो नहीं चलो वो भी एक बहाना है, एक मन का बंधन है, जैसे रात में अगर किसी को लगता है थोड़ा सा बुखार टाइप लग रहा है, मतलब है नहीं चेक नहीं किया पर लग रहा है, तो पहले ही संकल्प कर दिया कि बाबा को भी बता दिया कि कल अमृत वेला मैं तो नहीं करूंगा क्योंकि थोड़ा सा लग रहा है, मतलब अभी थोड़ा सा बीमार लग रहा है नहीं चेक करने की इच्छा, अगर कोई कहे चेक तो नहीं नहीं जरूरत नहीं, पहले ही संकल्प कर लिया और पहले अपने मन की तैयारी कर रखी है कि थोड़ा सा बीमार लग रहा है तो कल अमृत वेले के लिए छुट्टी,
यही शरीर साधन,
हाँ मतलब ब्राह्मणों की एक बहुत सुंदर शब्द है शरीर साथ नहीं देना है, ब्राह्मण क्या कहते हैं क्यों भैया आजकल थोड़ा कम हो गए, पुरुषार्थ थोड़ा ढीला हो गया, शरीर साथ नहीं दे रहा है। यह अलौकिक शब्द है ब्राह्मणों के। दुनिया वाले कहते बीमार हूं ये हूं, ब्राह्मण ऐसा नहीं कहते। ब्राह्मण क्या कहते, शरीर साथ नहीं दे रहा है,
मौसम
साथ नहीं दे रहा। हम जब आए थे तब ऐसे ही पुरुषार्थ करते थे, आप जैसे कर रहे हो ना बस ऐसे ही, हमारा भी ऐसा ही था। सुबह सुबह हम भी थोड़ा शक्तिशाली बस यही, पर अभी तो अभी शरीर साथ नहीं दे रहा है बस। तो ये भाषा है अलौकिक भाषा। हाँ हाँ, नींद नहीं हुई। नींद का तो एक योगी जीवन में दो ही चीजें को संयमित करना है, नियंत्रित करना, एक नींद और दूसरा भोजन। नींद और भोजन दो चीजों को जिसने क्या कहते हैं इसको, कंट्रोल कहो या फिर उसको जिसने सेट कर दिया, सेटिंग करना है इन दो चीजों की, तो सब कुछ हो जाएगा। कितना खाना, कितना सोना, बहुत ज्यादा खाना और बहुत कम खाना, ये भी नहीं, बीच बीच का मार। टाइमिंग कब कब खाना या खाते रहना। तीन बार भोजन करके चार बार टोली खाने वाले कभी योगी नहीं हो सकते। योगी अर्थात आत्म संयम, ब्रह्मा का जीवन अभाव में गुजरा है, कभी कभी कुछ नहीं था, है ना। उस समय भी ऐसे कुछ थे कि वो मौज मजो करने वाले तब भी थे। तो हम कौन है, यज्ञ रक्षक है, यज्ञ की पालना करने वाले भी हम है, तो इस बात का ध्यान रखना है। आगे बाबा कह रहे, अमृत वेले 3 बजे स्वयं अव्यक्त बाप दादा ने शिव ध्वज फहराया। 3 बजे, 3 बजे तक बाबा है, और भी रहे होंगे, और उसी स्थान पर खड़े होकर ब्रह्मा वत्सों को संबोधित करते हुए बोले। सुबह 3 बजे क्या कहा, आज के इस शिवरात्रि कहो व शिव जयंती कहो, शिवरात्रि व शिव जयंती के उत्सव की सभी को पदम गुना मुबारक हो। सदा हर सेकंड उमंग उत्साह बढ़ाते बढ़ाते इस विश्व को ही उत्साह भरा अपना राज्य बना लेंगे, विश्व को ही उत्साह भरा अपना राज्य बना लेंगे। आज औरों के राज्य में सेवाधारी बन सेवा कर रहे हो, और कल
अपना राज्य,
और क्या करोगे वहां, राज्य करेंगे, और कल अपने स्वराज्य के साथ विश्व के राज्य के अधिकारी बने की बने। तो सदा हर सेकंड उत्साह भरना और दुआएं लेना, हर सेकंड दुआएं लेते जाओ और दुआएं देते जाओ। आपकी दुआओं से सदा सर्व आत्माएं सुखी हो जाएंगी। वो दिन आया कि आया, कौन सा दिन, एक दिन आएगा। बाबा मुरलियों में बहुत सारी भविष्यवाणियां करते हैं, हर मुरली में एक सूक्ष्म भविष्यवाणी होती है कि ऐसा ऐसा होगा। तो बाबा क्या कह रहे हैं, शिवरात्रि के दिन ए बहुत दिन आया कि आया जब सभी आत्माएं बाप के झंडे के नीचे, छत्र छाया के नीचे खड़ी होंगी। ये दिन आए तो मुबारक हो चारों ओर के बच्चों को, दिल में रहने वाले बच्चों को मुबारक हो, मुबारक हो। क्या कहा बाबा ने, जो वो दिन आया कि आया जब सभी आत्माएं बाप के झंडे के नीचे, छत्र छाया के नीचे खड़ी होगी। और कौन कौन सी भविष्यवाणियां की है बाबा ने, एक दिन आएगा जो ऐसा होगा, एक दिन आया जो
लाइन लगेगी,
आबू से लाइन लगेगी,
एक
ही हट्टी, यहाँ सब भाग कर आएंगे, और
कलकत्ता का विक्टोरिया ग्राउंड आपका हो जाएगा,
कलकत्ता विक्टोरिया ग्राउंड आपका हो जाएगा। और क्या क्या, सभी विकार, सभी विकार। अच्छा, जब इधर बधाई बनाएंगे तब उधर समय, प्रकृति और माया विदाई लेगी। कल था ना स्लोगन, कल या परसों, पहला भगत तुम्हारा माया होगा, तुम मास्टर भगवान बनोगे और माया तुमको नमस्कार करेगी। वो तो दूसरा है, नहीं भविष्यवाणी है, प्रत्यक्षता की। एक तरफ जय जयकार होगा, प्रत्यक्षता होगी, जय जयकार होगा, और हाहाकार होगा एक तरफ। वो सबसे संगम युग का जो अंतिम पार्ट टू संगम युग का, ये अभी पार्ट वन चालू है, वो पार्ट टू है संगम युग का, जब प्रत्यक्षता का युग होगा। एक तरफ बाबा के बच्चे, एक तरफ भक्तों को साक्षात्कार, एक तरफ विनाश, ऐसा सब कुछ एक साथ होगा वहां पर। और
एक बार ट्रांसपोर्ट बंद हो जाएगा और जितने विदेशी आने वाले हैं सब
रेलगाड़ी में जाएंगे। हाँ, वो अंतिम ट्रेन में जिनको यहाँ पहुंचना है पहुंच जाएंगे, उनको टचिंग होगी, चलो, और ट्रेन रुकी रहेगी उनके लिए, उसमें बैठे, गाड़ी चालू, उधर विनाश, वो इधर पहुंच जाएंगे बाबा के बच्चे। और
सबसे पहली लाइन ऑस्ट्रेलिया में लगी।
ऐसे बोला
किस चीज की?
एक अव्यक्त वाणी में पार्टियों से मुलाकात में कहा है बाबा ने, तीन चार संडे पहले की मुरली थी ना ऑस्ट्रेलिया की, पार्टियों से मुलाकात में कहा है बाबा ने, हमने डिस्कस किया था यहाँ पर
फर्स्ट संडे ऑफ दिसंबर की।
हाँ दिसंबर फर्स्ट संडे उसमें। और पश्चाताप, सबसे ज्यादा पश्चाताप किसको होगा? क्यों? दुनिया वालों को तो पश्चाताप होगा कि भगवान आया और हमको पता ही नहीं, ये पश्चाताप उनका होगा। और ब्राह्मण खून के आंसू बहाएंगे, उनके पानी के आंसू, तुम्हारे खून के आंसू। क्यों? भगवान आया, 80 साल हो गए, उसने ज्ञान सुनाया, सब कुछ कराया, पर हमने कुछ नहीं किया, जो उसने कहा वो किया ही नहीं, तो पश्चाताप तो होगा ना। वो कह रहा है मैं भीख मांगता हूं फॉर माय सेक, मेरी खातिर, केवल मेरे लिए, ओनली फॉर मी, केवल मैं कह रहा हूं इसके लिए, उतना तो करो, पर फिर भी नहीं किया था। और क्या होगा बाबा ने धर्मराज के लिए
भी बहुत सारे, अबू निवासियों
के लिए बोला है, निवासियों को भी बहुत आंसू भाएंगे, जिस स्थान पर वो आया है सारी दुनिया वहां आ रही है पर उन्होंने उसको नहीं पहचाना, तो भी एक जैसे कि। तो बाबा क्या कह रहे, वह दिन आएगा जब सब आत्मा बाप के झंडे के नीचे, छत्र के छाया के नीचे खड़ी हो जाएगी, मेरा बाबा सबके मुंह से निकलेगा, एक समय ऐसा आएगा। अभी कहते हैं ब्रह्मा कुमारियों का बाबा, तब कहेंगे मेरा बाबा, ऐसा भी एक समय आएगा। तो क्या सुना, तीन बातें हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो स्वराज्य अधिकारी, राजा अर्थात स्व पर शासन, मैं स्वराज्य अधिकारी हूं, मैं बेफिक्र बादशाह हूं, फिक्र बाप आए हैं फिक्र को लेने के लिए। बाप किसके लिए आए हैं? सारी चिंताएं, सारी फिक्र, सारे बोझ, सारे तनाव लेने के लिए। उसके आने के कई कारण है, राम जन्म ते हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका, तुलसीदास ने लिखा है कि उसके आने के कई कारण है, अन्य अन्य ऐसे कितने असंख्य कारण लिस्ट बनाई जा सकती है, वो क्यों आया। तो यहाँ बाबा ने कहा है किस लिए आया है, फिक्र लेने। तो फिक्र कोई कोई छिपा के नहीं रखना है, कहाँ छिपा के रखते हैं, पॉकेट में, कौन से पॉकेट में, मन के पॉकेट और बुद्धि के पॉकेट में भी कोई फिक्र छिपा के नहीं रखना है। दूसरी बात कही है साधनों के बारे में, तो हमारी साधना कैसी हो, निराधार हो, किसी भी साधन के अधीन ना हो। सोचो कि जो साधन आज है कल कुछ नहीं रहेंगे, फिर भी हम वैसी ही साधना करते रहे, वैसा ही हमारा योग अखंड चलता रहे, चाहे मधुबन में है, मधुबन से बाहर है, कहीं पर भी हो। और तीसरी बात, दुआएं लेना, तो सदा हर सेकंड उत्साह भरना और दुआएं लेना, हर सेकंड दुआएं लेते जाओ और दुआएं देते जाओ, आत्माओं से दुआएं लेना। कैसे लेंगे? दूसरों को सुख देंगे, शुभकामना, आत्माओं को सुख देने की भावना हमारे अंदर जितनी हो, श्रेष्ठ कर्म जितने हो, निस्वार्थ कर्म जितने हो, निष्काम कर्म जितने हो, परमात्मा याद में किए हुए जितने हमारे कर्म है, उतनी असंख्य आत्माओं की दुआएं मिले। तो एक है दुआएं लेना, और दुआएं देना अर्थात, दुआएं देना मतलब शुभ भावना,
समय पर
मदद करना। हम मदद करोगे तो दुआएं मिल जाएगी, दुआएं देना, दुआएं दे कैसे दे, दुआएं देने अर्थात, देना अर्थात शुभ भावना सबके लिए, और सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा किसके लिए, अतिरिक्त स्नेह किसके लिए, अपकारी पर, जो अपमान करता है, दुख देता है, गाली देता है, निंदा करता है, षड्यंत्र रचता है आपके विरोध में, गिराने के लिए कुछ कुछ करता है, इसको कैसे नीचे गिराया जाए, सबके सामने अपमान करता है, अकेले में अपमान किया तो भी ठीक है, सबके सामने करना उसका थोड़ा ज्यादा असर पड़ता है। एकांत में कमरे में बैठ के कुछ कोई बोल दे, डांटे तो कुछ नहीं, पर सबके सामने अगर कोई डांट दे तो
सबके सामने क्यों बोला, अलग से बोल देते।
तो उन आत्माओं को ज्यादा एक्स्ट्रा अतिरिक्त स्नेह उनको देना है, जो इस तरह की आत्मा है, जो निंदा करती है, बार बार हमारी टांग खींचती है, बार बार हमको नीचे गिराती है, बार बार हमारे विरोध, हमारे सामने बहुत अच्छा बोलती है परंतु हमारे पीछे हमारी निंदा करती है,
जो
वातावरण खराब करती है, जिनका मोबाइल बीच में योग में बज जाता है, उनके लिए ज्यादा दुआएं रखनी।
एकदम दुआएं,
जिनका योग चालू है उसके बीच में दुआएं बजती है, जो आते हैं योग के कमरे में और जोर से दरवाजा खोलते हैं, और जो आते हैं सोफा पे ऐसे जोर से बैठते हैं कि सब हिल जाता है सोफा, जो आते हम यहाँ योग कर रहे हैं और सामने आके बैठ जाता है तो बाबा बिल्कुल हमको दिखता ही नहीं, इतने ऊंचे लंबे हैं ऐसे हैं और सामने आके बैठ गए हमारे, खर्राटे लेते उनके लिए तो बहुत ज्यादा दुआएं रखनी है। बाबा क्या हम बैठे हैं डायमंड हॉल में और बाबा एकदम स्पष्ट दिख रहा है और अब इतनी खुशी हो रही है कि बाबा आएंगे और हम दृष्टि लेंगे और थोड़ी देर में कोई आके बैठ जाता है, हमको ऐसे भी नहीं दिखता है, ऐसे भी नहीं दिखता है, तो उस आत्मा के लिए सबसे ज्यादा दुआ है। हमारी सीट पर कोई दूसरा आके बैठ जाता है तो उसके आत्मा के लिए ज्यादा दुआ है। तो दुआ है उनके लिए नहीं कि जिनका सब ठीक ही है, जो कहते हैं वहां तुम तो बहुत बढ़िया हो, उनके लिए तो करने की जरूरत नहीं है, वो तो है ही। दुआ है किनके लिए, बहुत बड़ी लिस्ट है, जिनका मोबाइल बजता है योग में, हम योग में बैठे हैं, अभी बैठे ही थे कि फोन आ गया और पता चला कुछ मामूली सा काम था, अभी मुरली में बैठे थे बुला लिया डिपार्टमेंट वालों ने, इंचार्ज या फिर नीचे वालों, नीचे वालों ने बुलाया तो जाकर क्रोध, ऊपर वाले ने बुलाया तो अंदर दबा देंगे अंदर अपना। तो दुआएं उन सभी आत्माओं के लिए जो हमारे मन में, उन आत्माओं के लिए थोड़ा सा सम्मान कम है। हम देख रहे कुछ कुछ आत्माएं हमेशा आगे आगे कर रहे, काम कुछ नहीं और आगे आगे, योग कुछ नहीं पर बाबा के आसपास घूमते रहते, हमको लगता है देखा बाबा भी ना कुछ बोलना चाहिए इनको। तो उन सभी आत्माओं के लिए जिनके प्रति हमारे मन में सम्मान कम है, उनको इमर्ज करो अमृत वेले और उनको थोड़ा सम्मान दो, उनको मान दो, ठीक है तुम्हारा मोबाइल बजा बहुत अच्छा, रिंगटोन भी बहुत अच्छी थी, जितना अगली बार अगर बजा तो और एक्स्ट्रा प्रेम देंगे तुमको, ये संकल्प करके जाओ। शिवानी बहन कहती है ना, बेचारे ने अपना रिंगटोन कितना मुश्किल से चुना होगा, वो जो गीत उसने डाला पता नहीं क्या क्या सॉफ्टवेयर यूज किए होंगे, यहां से वहां फाइल कन्वर्ट की होगी फिर बनाया होगा, इतना उसने मुश्किल से जो चुना है और आप उससे डिस्टर्ब होते हो। अच्छा होना चाहिए, बजाए ठीक है बजने दो, कोई ना कोई तो बजेगा, हम जैसा चाहते वैसे तो नहीं होगा। तो ये सभी आत्माओं के लिए दुआएं देना, शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की भावना, आगे बढ़ाने की कामना, आत्मिक स्वरूप की भावना, अपनेपन की भावना, कमजोरी ना देखना, सब संडे की मुरली, उनकी कमजोरी ना देखना, उनकी विशेषताओं को देखना, उनकी कमजोरी को देखते हुए उसे फैलाना नहीं, उसे अपनी कमजोरी समझना, जैसे अपनी कमजोरी को नहीं फैलाते हो ना वैसे उसकी कमजोरी को भी छिपा देना, ना फैलाना, ये सारी है दूसरों को सम्मान देना। अच्छा, ओम शांति।